लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
निर्मल आश्रम कहकर बाबा जिन्हें पुकारते थे, ऐसी निर्मलता की साक्षात मूर्त आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। दीदी का लौकिक जन्म 1935 में मुंबई महानगरी में हुआ। वहीं पर आपने अपनी मेडिकल स्टडीज की। 1962 में जब स्टडी पूरी हो गई और आप जॉब पर लगे हुए थे, आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला। उसके बाद तो आपने बाबा की राय सलाह से 1966 में सेवा केंद्र भी खोला, अपनी क्लिनिक भी खोली और मेडिटेशन और मेडिकेशन इन दोनों के द्वारा मानवता की सेवा में लग गए। और उसके बाद 1971 में बाबा ने आपको विदेश सेवाओं के लिए सेलेक्ट किया। 71 से लेकर 78 तक विदेश के अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते हुए आपने वहां पर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने, सेवाओं का विस्तार करने के निमित्त बने। अब कई स्थानों पर गए, सबसे पहले तो आप यूके लंदन गए, उसके बाद अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कई स्थानों पर आपने जा जाकर सेवाएं आरंभ की। और उसके बाद 1978 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और वहीं पर स्थायी रूप से रहकर 78 से लेकर 2008 तक आपने एशिया पैसिफिक रीजन में सेवाओं का विस्तार किया। आज की डेट में उस रीजन के अंतर्गत करीब 17-18 देश हैं जहां पर बाबा के सेवा केंद्र खुले हैं, बाबा के डेडिकेटेड बच्चे निकले हैं। तो आप वर्तमान में एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल डायरेक्टर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं। और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर अकेडमी का भी कार्यभार संभालने के लिए दिया। तो 2009 से भारत की धरनी में मधुबन कैंपस में ज्ञान सरोवर में रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर के रूप में। और जैसे जैसे दादियां अव्यक्त होती चली गई, दीदी के कंधों पर और जिम्मेवारी आई, आप वर्तमान में हमारे संस्था के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं। ज्यों ज्यों आयु बढ़ रही है वैसे वैसे कंधों पर जिम्मेवारियां बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अथक होकर सेवाएं करना, एक एक पल को सदुपयोग करते हुए इस्तेमाल करना, कुछ भी व्यर्थ जाने नहीं देना, चाहे वो वाचा हो, चाहे वो मनसा हो, चाहे वो कर्मणा हो, हर चीज को संभाल संभाल के इस्तेमाल करना। और साथ साथ बहुत कम शब्दों में वार्तालाप करना और बहुत कम शब्दों में बाबा के बड़े बड़े रहस्य समझा देना दीदी की ये विशेष विशेषता है। और साथ साथ जितना ही बिजी रहते हैं उतना ही इजी भी रहते हैं। तो बहुत ही प्रतिभावान, बहुमुखी, प्रतिभा के धनी, जो बाबा ने सिखाया उसके आधार से पूरा जीवन गढ़ा है, ऐसी आदर्श मूर्त दीदी से आज हम सुनेंगे भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य। ऐसे तो आपको बता दिया महसूसता द्वारा संपूर्णता, लेकिन वो बहुत बड़ा लक्ष्य है और उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो दीदी आज कौन सा विषय ले रहे हैं? बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लेस, कैसे इसको जीवन में लाए और कैसे ये सहायक है हमें अपनी संपूर्ण स्टेज के करीब जाने के, इस पर दीदी प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। देखो आप कितने भाग्यशाली हो, पांडव भवन में आपको भट्टी करने का चांस मिला। यहाँ तो क्यों लगी है भट्टी वालों की, आपको चांस मिल गया। तो आप कौन हो? भाग्यशाली, सौभाग्यशाली या पद्मा पदम भाग्यशाली? हम भाग्य लेकर बाबा के पास आए, हमारे भाग्य में नहीं होता तो बाबा नहीं मिलता। देखो आज भारत में करोड़ों लोग हैं, उसमें से कितनों को बाबा का परिचय मिला? आधा कल्प से भक्ति करते आए, अभी भगवान आकर अपना परिचय देते हैं। तो बाबा की क्या आशाएं हमारे में, क्योंकि बाबा की आश पूरी करनी है, बाबा की क्या आश है? बच्चे आप समान बने, स्वर्ग के मालिक बने और उसके लिए यहाँ बाबा की याद में रहे, श्रीमत पर चले, रोज मुरली में याद दिलाते हैं, माँ में कम याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। और जितना याद करेंगे उतना पुण्यात्मा बनेंगे, पवित्र बनेंगे, उच्च पद पाएंगे। तो जीवन में ये तपस्या जरूरी है और आपको चार दिन मिला है, तो चार दिन में मौन रखना है, तीन प्रकार का मौन, शब्दों का, मन का, फालतू संकल्पना है, और तीसरा है मोबाइल फोन का। कौन है जो मोबाइल फोन का त्याग कर सकते हैं चार दिन? अच्छा है, जितना मौन में रहेंगे नेचुरली बाबा की याद रहेंगे। तो आज रात को घर में फोन कर देना, हम आराम से पहुंच गए हैं। अभी तीन दिन हमको डिस्टर्ब नहीं करना। तो आज का टॉपिक हमने रखा है बैलेंस, ब्लेसिंग और ब्लिसफुल। तो विशेष घरों में रहने वाले बैलेंस जरूर चाहिए, क्योंकि कोई तो नहीं तो या तो अपने कारोबार में बिजी हो जाते हैं और कोई है भट्टी में बैठे रहते हैं। तो कारोबार ठीक नहीं चलाते और साथ ही सब कंप्लेन करते हैं, खास घर वाले। सवेरा हुआ, सफेद कपड़ा पहना, चल पड़े, बच्चों का ख्याल नहीं, घर का ख्याल नहीं। तो ये भी उलहना ना मिले, सबको खुश करना है, तब तो ब्लेसिंग मिलेंगे। तो सबसे पहला बैलेंस है न्यारा और प्यारा। देह को भी भूलो, देहधारियों को भूलो, सब में नष्ट मोह हो जाओ। तो एक तरफ नष्ट मोह, दूसरे तरफ प्यार स्वरूप, जैसे बाबा कितना प्यारा। और बाबा ब्रह्मा बाबा लौकिक में रहते हुए न्यारा और प्यारा बन के दिखाया, संन्यास ने किया बाबा ने। संन्यासी हद का संन्यास करते हैं, घर बार छोड़ के जाते हैं, तो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं बाल बच्चों की पत्नी के। लेकिन बाबा कहते हैं घर में रहो, नष्टो मोहार बनो, निर्विकारी रहो, कोई भी विकार का अंश मात्र ना हो। तो ब्रह्मा बाबा का चाहे उनका लौकिक परिवार भी साथ में रहा 14 साल भट्टी किए, लौकिक परिवार भी साथ में रहा, परंतु उनका प्यार जितना लौकिक से था उतना ही अलौकिक से था। और यज्ञ माता की जिम्मेवारी मम्मा को दी, उनकी लड़की बहू सब ज्ञान में थे। विजेंद्रा दादी कम नहीं थी, निर्मल शांता दादी कम नहीं थी, पर जिम्मेवारी दी मम्मा को। और जब उनके लड़कों ने छुट्टी ली, क्योंकि नारायण दादा भी 14 साल रहा, बेगरी पाट आया, बाबा को कहा मैं दुनिया में जाना चाहता हूँ, कमाई करूँगा। और वास्तव में यज्ञ में रहते उसका प्यार ज्योति से हो गया था। दोनों चल पड़े, बाबा को जरा भी दुख नहीं था। और जो भी बाबा के पास जाता था ना, फील करता था बाबा मेरे से बहुत प्यार करता। चाहे कोई भी हो, निष्पक्ष प्यार। सबको बच्चे बच्चे के, चाहे मिनिस्टर, चाहे यहाँ का लेबरर, चाहे कुत्ता, चाहे चिड़िया, सबको बच्चे बच्चे। और जब देखता था कि लेबरर के पास पूरा गरम कपड़े नहीं हैं, फॉर उसके ब्राह्मणी लच्छू दादी थी, उसको कहता था लच्छू बच्ची इसको स्वेटर दो, तो पहला तो था न्यारा और प्यारा, दूसरा लव और लॉ, उसका बैलेंस। सबको डिसिप्लिन कायदे मर्यादा अनुसार चलना होता था, कोई भी मर्यादा का भंग नहीं कर सकता था। दूसरा था एक तरफ स्वीट था, दूसरे तरफ स्ट्रिक्ट। इतना प्यार स्वरूप और मीठा था, बच्चे सब बाबा के पास आते थे, टोली देता था, कुछ खिलौना देता था, तो इसलिए बच्चे आते रहते थे, चक्कर लगाते थे। तो एक तरफ इकोनॉमिकल था, तो दूसरे तरफ उदार था, स्पेशली मुरली मिने कई बार कहते हैं कम खर्च बालाना से, जो भी प्रोग्राम करो कम खर्च करो पर अच्छा करो, और हमेशा क्योंकि मधुबन में तो कोई फ्रूट नहीं बनता तो फ्रूट दिल्ली बंबई से आता, बड़े शहरों से, तो बाबा को दिखाते थे, बाबा प्राइस पूछते थे और बाबा को प्राइस सब मालूम थी। जब देखता था कि ये बच्चे से ठगी हुई है तो कहता था क्यों ज्यादा खर्च किया, बुद्धू है, टाइटल मिल जाता था। और जैसे उदार दिल भी थे या जो भी आते हैं गिफ्ट के बगैर नहीं जाते, चाहे वो कितना भी यज्ञ में दे न दे पर गिफ्ट जरूर मिलेंगे सबको समान। बैलेंस आत्मा और शरीर का बाबा कहते थे, शरीर को भी आराम दो क्योंकि कम से कम 6 घंटा आराम दो, रात को, दिन में 1 घंटा दो, और दादी जानकी भी विदेश में थी, कहती थी कम से कम 1 बार का भोजन फुल भोजन हो, दाल चावल रोटी सब्जी, और जब दादी बीमार थी तो खाना नहीं पकाते थे, अकेली रहती थी, तो किसी माता ने कंप्लेन किया कि दादी खाना नहीं खाती है, तो बाबा ने चिट्ठी लिखी, तुम बीमार हो, बाबा तो बीमार नहीं है ना, बाबा के लिए तो 1 बार खाना पकाओ। और विदेश में भी कहती थी दादी कम से कम 1 मील जरूर ठीक बनाओ, क्योंकि नहीं तो विदेशी क्या करते हैं, नौकरी, घर संभालना, सेवा करना, सब करना है, तो सवेरे तो ब्रेकफास्ट में टोस्ट या सीरियल खा लेते थे दूध में, दिन के लिए फिर साथ में एप्पल और गाजर ले जाते थे, और शाम को आकर फिर कोर्स होता था, तो शाम को टिन फूड गरम करके खा लेते थे। राधिकाएं नहीं, एक टाइम जरूर फुल भोजन होना चाहिए। बैलेंस याद और सेवा का, क्योंकि कई लोग सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं याद करने का टाइम नहीं मिलता। अर्थात या तो ऐसे होता है, रात को देरी से सोते हैं, सवेरे अमृत वेला में फ्रेश नहीं, उठते भी है तो भी जुट के खाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, सेवा करो, याद में रहकर करो, अमृत वेला जरूर उठो। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। तो जब हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे मिलियन मिनट्स ऑफ पीस, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, तो उसकी ऑर्गेनाइज करने वाली बहन है ना, उसको अव्यक्त बाप दादा मिले तो कहा 10:30 के बाद काम नहीं करना है, नहीं तो वो 12 बजे तक काम करती थी, फिर अमृत वेला मिस हो जाता था। तो बाबा कहे नहीं, बैलेंस एकांत हो या संगठन, खुश रहना। ऐसे नहीं कि एकांत में कंप्लेन करे कि बाबा मैं तो अकेली हूं, कोई बात करने वाला नहीं है, साथी चाहिए। नहीं, जब फ्री है बाबा की याद में बैठो। ऐसे नहीं फ्री है तो टेलीविजन चलाओ, फोन ऑन करो, नहीं। अपना समय, संकल्प, शक्ति, स्थान सब सफल करना है, कुछ व्यर्थ नहीं गंवाना है। व्यर्थ गंवाएंगे तो समर्थ नहीं बनेंगे। बैलेंस अपनी जिम्मेवारी भी बजाओ और निमित्त भी रहो। माँ है, बच्चों की पालना करनी है, खाना पीना टाइम पर देना है। बाप है, नौकरी करके कमाई करनी है, जीव जिम्मेवारी है। साधु संत के माफिक घर बार छोड़ के नहीं चले जाना। हमको तो घर बार में रहकर सब नियमों का पालन करना है और देखना है विकार का अंश मात्र भी ना हो। तो जब हम बाबा के बन गए तो क्या हुआ, हम बाबा के कहते बाबा हम आपके हैं, हमारा कुछ नहीं। तो कई है बलि चढ़ते हैं, तो जिम्मेवारी तो निभानी। हल्का रहना है। जब बाबा के बन गए सब कुछ बाबा का है, परिवार बाबा का है, बाबा की जिम्मेवारी, तो हम हल्के रहेंगे। बैलेंस, बिजी और इजी, बिजी होने के बाद स्ट्रेस ना हो, क्योंकि दुनिया वाले तो बहुत बिजी होते हैं ना, तो कहेंगे बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत थका हूं। नहीं, इजी। हमने देखा है मम्मा बाबा दादियां बिजी रहते थे। दादी प्रकाश बनी, 100 से ऊपर देशों में सेवा केंद्र देखती थी, पर हल्की। बेड में गई, 2 मिनट में सो जाती थी, सदैव हर्षित। हम लोगों ने, विदेशियों ने पूछा, दादी आप इतनी हल्की और हर्षित कैसे रहती है? दादी कहती है, मैं क्या करती हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, कराने वाला बाबा है, तो मुझे कोई चिंता नहीं। तो एक तरफ बाबा नम्र थे, बच्चों को नमस्ते करना, पांव लगने देना नहीं, कहते थे तुम मेरे से भी ऊंचे हो। और दूसरे तरफ नशा था कि मैं बाबा का मुरवी बच्चा हूं, कल जाकर कृष्ण बनूंगा। लच्छू जब बाबा को तैयार करती थी ना, तो नेचुरली उस समय तो धोती और कुर्ता पहनते थे, परंतु कहते थे कल जाकर मैं ये ड्रेस पहनूंगा, कल जाकर मैं ये बनूंगा। तो नशा था। बालक और मालिक का बैलेंस था। मालिक बन के ऑर्डर देना था या डिसीजन करना था क्या करना है क्या नहीं करना है, पर बालक बन के राय लेता था, क्योंकि उस समय जगदीश भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई आदि पढ़े लिखे संसार में रहने वाले कई भाई थे, तो उनकी राय लेते थे, फिर निर्णय खुद लेते थे। तो रमेश भाई ने राय दी, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बनाओ बाबा, क्योंकि उसके पहले बाबा ने ब्रह्मा कुमारियों को रजिस्टर नहीं किया। कहा हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, हम क्यों कौरव गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर हो गए। फिर रमेश भाई ने बताया कि भाई विदेश से पैसा आता है तो ट्रस्ट में होगा तो हम स्वीकार कर सकेंगे, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। फिर बाबा ने ट्रस्ट बनाया। बैलेंस स्वसेवा और विश्व सेवा। स्वसेवा के लिए ज्ञान योग के लिए टाइम देना पड़ता है। अमृत वेला, मुरली, शाम का योग, रात को सोने के पहले योग, ये सब करना होता है। और विश्व सेवा भी करनी है। विश्व सेवा के लिए बेहद बुद्धि। तो बाबा का प्लान चलता रहता है, जैसे भी एग्जीबिशन का सेट बना, फिर बाबा का मंथन चलता था, क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए आदि आदि। और आप मुरली में देखते हैं, बाबा कहेंगे मंदिरों में जाओ, सत्संगों में जाओ, गंगा तीर्थ पर जाओ, पर्चे छपाओ, पतित पावन कौन, आपके पारलौकिक पिता कौन है, उसका नाम क्या है। लौकिक पिता तो नाम जानते हो, पर पारलौकिक पिता कौन है। तो आदि आदि पर्चे छपाओ, एरोप्लेन से डालो, पर्सनली जाकर सबको समझाओ, बाबा एक तरफ अंतर्मुखी थे तो दूसरे तरफ रमणीक भी थे। सारा दिन मुरली के बाद फिर मंथन चलता रहता था बाबा का। तो जब भी जाओ हम देखते थे योग में बैठे हैं, मंथन चलता है, और चलते फिरते जिसको भी मिलते थे अपना मंथन सुनाते थे। और हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को मालूम था कि बाबा 5:30 बजे फ्री होता था और लेटता था यहाँ, खटिया रखी थी जहाँ आजकल हम चप्पल उतारते हैं, और हम लोग जाते थे और थल्ला होता था, हम बैठते थे और बाबा कुछ ज्ञान का मंथन सुनाते थे। और रमणीक भी था। क्या हुआ, दादी प्रकाशमणि बंबई आए थे सेवा के लिए, मुंबई आई थी जब एग्जीबिशन का चित्र बनाने थे, बाबा ने पटना से उनको मुंबई भेजा। तो शुरू में तो इतनी सेवा नहीं थी, मुंबई तो बड़ा शहर, इतना जल्दी सेवा नहीं बढ़ती है। तो बाबा ने एनवलप में मरी हुई मक्खी भेजी कि तुम मक्खियां मारती हो ना। और लच्छू दादी भी ऐसे ही करते थे। हम लोग हैं विदेशी, मार्च में यहाँ आते थे, अप्रैल में जाते थे, तो कभी कभी 1 अप्रैल जाते थे, तो हम टैक्सी में बैठ गए और लच्छू दादी दौड़ती दौड़ती आई, बाबा ने आपके लिए गरम गरम पकौड़े भेजे। और वो पकोड़े में बाहर से तो बेसन था पर अंदर मूंगफली के छिलके थे या रुई थी। तो बाबा शिक्षक बन के सावधान करते थे। आजकल भी देखो कई मुरली कितनी सावधानी की है, ये माया से बच के रहना, माया कैसे आती है अलग अलग रूप से आदि आदि, तो सावधानी भी देता था। तो साथ साथ शुभकामनाएं भी देता था कि बच्चे छत्र छाया में रहे, सेफ रहे, माया को पहचाने, माया के वश ना हो। और बाबा ने जो लास्ट 3 शब्द बोले, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकार, तो खुद भी उस स्टेज को पाए थे। क्योंकि पहले तो बाबा ने हमको कहा आप आत्मा हो, आत्मा अभिमानी बैठकर रहो। फिर दूसरी स्टेज फरिश्ता, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता, और तीसरी स्टेज निराकार। और निर्विकार, क्योंकि लक्ष्य तो है ना हमारा संपूर्ण पवित्र बनना, तो इसलिए यहां भी जो 3-4 दिन है अपने आप को चेक करना कि हमारे में कौन से गुण नहीं है और कौन से अवगुण या विकार है। और लक्ष्य रखना है उन विकारों पर विजय पानी है। तो जितना बाबा की याद में रहेंगे और ऑपोजिट गुण धारण करेंगे, क्योंकि यदि लोभ है तो सोचो सत्युग में हमारे पास क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, न खाने पीने की कमी होगी, 36 वैरायटी खाना मिलेगा, विमान होंगे, यहां तो गाड़ी होंगे 4 पहिए वाली, वहां तो हरेक के पास विमान होगा, वहां तो विमान में घूमने जाएंगे कलयुग में क्या है, लंदन अमेरिका क्या है, कुछ नहीं। जब बाबा को कहते थे ना, बाबा यहाँ आओ घूमने आओ, बाबा कहते ये तो कांटों का जंगल है, यहाँ सब बंदर रहते हैं, क्या कर देखूंगा। तो पूरा वैराग्य था, भल करके 60 वर्ष की आयु में सब कुछ कर लिया होगा, परंतु फिर भी पूरा वैराग्य था। ऐसे हम बच्चों को वैराग्य लाना है तो हमारी तपस्या तीव्र होंगी, क्योंकि समय थोड़ा है। बाबा घड़ी 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 सावधान करते हैं कि अब घर जाना है, तो इसलिए अपने आप को बाप समान संपूर्ण बनाना है। विकार का अंश मात्र ना रहे, अंश रहेगा तो वंश बढ़ेगा। और बाबा को बिल्कुल अहंकार नहीं था, उनको मालूम था कल जाकर मैं नारायण बनूंगा, परंतु पुरुषार्थ में मम्मा बाबा ने कमी नहीं छोड़ी। मम्मा को भी मालूम था कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, परंतु पुरुषार्थ करती रही। और कभी बाबा बच्चों को नमस्ते नहीं करने देता था, खुद नमस्ते करते थे। और हम लोगों को स्टेशन पर रिसीव करने नहीं ना बोलता था कि मैं गुप्त हूँ, गुप्त रहने दो, मैं सेंटर पर आकर सबको मिलूंगा, सेंटर से छुट्टी लूंगा। साधु संत क्या करते हैं, उसकी 20-25 गाड़ियां होती है, उसके फॉलोअर्स सब गाड़ी में उसके पीछे पीछे जाते हैं। बाबा के टाइम एक भी गाड़ी नहीं थी मधुबन में, टैक्सी में हम आते जाते थे। तो अहंकार बिल्कुल नहीं था, नशक था। और ज्ञान योग में मस्त रहते थे। शिवा का प्लान बनाते रहते थे, उमंग उल्लास दिलाते रहते थे। तो इसी रीत से हमें भी क्या करना है, अपना पुरुषार्थ तेज करना है। बैलेंस रखेंगे तो सबकी दुआएं मिलेंगे, नहीं तो घर वाले ही चिल्लाएंगे कि ये अपना घर का ध्यान नहीं रखती, सवेरे शाम ब्रह्मा कुमारियों में चली जाती है। तो सवेरे भले जाओ, शाम को अपनी पहले जिम्मेवारी पीछे जाओ। हमारे पास फिलीपींस में एक यंग भाई ज्ञान में आता था, 25-27 साल का था, शादीशुदा, और एक बच्ची भी थी। तो उसको ज्ञान का, सेवा का बहुत शौक था। तो सवेरे मुरली में आता था, शाम को सेवा में आता था, सैटरडे संडे भी ज्यादा टाइम छुट्टियों में सेंटर सेवा। उसकी वाइफ लड़ने आई मेरे से कि ये देखो, लड़की को घुमाता भी नहीं, खुद तो बाहर खाता नहीं, पर हम लोगों को भी खिलाने नहीं ले जाता है, न कभी पार्क में ले जाता, न कभी बीच पर ले जाता। फिर मैंने समझाया उस भाई को कि भाई सवेरे आओ, शाम को नहीं, और वीकेंड में एक दिन तो परिवार को घुमाने ले जाओ। तुम नहीं खाना रेस्टोरां में, इन्हों को तो खिलाओ। फिर तो समझौता हो गया। तो इसी रीत से हमको देखना है, हम बैलेंस रखें, सबको सुख देवे। ब्लेसिंग कब मिलेंगे? जब औरों को सुख देंगे, सहयोग देंगे। तो इसलिए लक्ष्य रखना है कि जो खजाने हमें मिले हैं अविनाशी, उसको दान करते रहना, क्योंकि दान करने से कोई कम नहीं होगा, हमारा खजाना और भी बढ़ेगा, तो ब्लेसिंग मिलेंगे। और अपनी अवस्था ब्लिसफुल अर्थात आनंदमय रहेंगे, क्योंकि औरों को खुश करेंगे तो खुद भी तो खुश होंगे। तो योग में जो खुशी रहती है उसको ब्लिस कहेंगे, क्योंकि हमको गुप्त खुशी रहती है। दुनिया वाले खुश कब रहते हैं? खरीदारी कुछ करते हैं तो खुश रहते हैं, और हम अविनाशी खजाना जमा करते हैं, तो उसका योग द्वारा हमें आंतरिक आनंद मिलता है। तो इसलिए ये देखना है कि अपने जीवन में बैलेंस जरूर हो तो ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिल जाएंगे और ब्लिसफुल रहेंगे। ओम शांति।
अवश्य ही सभी को भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट हुआ होगा, इसी आधार से पूरी भट्टी करनी है।